समर्थ बोल ही रहा था कि अर्पिता ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हम जानते हैं आप बहुत उदास थे, हमने आपकी उदासी को देखा था, लेकिन हम उस समय पूछ नहीं पाए। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक गया और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करते हुए बोला, अर्पिता, हमें नहीं लगता अब हमें इन सारी बातों पर ज़रा भी ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जो बीत गया उसे याद करके अब क्या ही फ़ायदा है, अब तो बस हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है। हम अपनी अब बाकी की सारी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। अर्पिता उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, और हम भी। समर्थ ने अर्पिता के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, तो फिर कल हम मासा से बात करें। समर्थ की ये बात सुनकर अर्पिता थोड़ी सी घबरा गई और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। समर्थ ने जैसे ही इस बात को नोटिस किया उसने उससे पूछा, क्या हुआ, आप क्या सोचने लगी अर्पिता? अर्पिता ने कहा, मासा को अगर ये बात पता चली तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी और भाई सा। अर्पिता ये सोचकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी। तभी समर्थ ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला, उसे अपने करीब खींचा और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम हैं ना, और आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभिमन्यु से भी बात कर लेंगे और मासा से भी, और उन्हें मना भी लेंगे। अर्पिता समर्थ का कॉन्फिडेंस देखकर थोड़ी सी खुश हुई और फिर उसने कहा, लेकिन आपके मम्मी पापा? समर्थ ने खुश होते हुए कहा, जब हम मासा और अभिमन्यु को मना सकते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को भी मना लेंगे, और जहाँ तक हमें लगता है आज तक हमारे मम्मी पापा ने हमें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, तो वो भला आपसे हमें शादी करने के लिए क्यों मना करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात हमें मासा को मनाना लग रहा है। हम ऐसा सोच रहे हैं अर्पिता, हमें सबसे पहले अभिमन्यु से बात करनी चाहिए, है ना? अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। समर्थ ने कहा, हाँ हम कल ही अभिमन्यु से बात करेंगे। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर एक गहरी सोच में डूब गई और उसे ऐसे सोच में डूबा देखकर समर्थ ने कहा, क्या हुआ, अब आप क्या सोचने लगी अर्पिता? अर्पिता ने समर्थ की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, पता नहीं क्यों हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। अर्पिता की ये बात सुनकर समर्थ ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने और भी करीब खींचते हुए अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हमेशा ही आती हैं, लेकिन अब आप ये सोचकर परेशान मत होइए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हम संभाल लेंगे, बल्कि आप इस बात को सोचकर खुश होइए कि अब अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसे आपको अकेले नहीं सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हम आपके साथ होंगे। तब ना ही आपको हम किसी सिचुएशन में अकेले छोड़ेंगे और ना ही अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत होगी। आपकी लाइफ में अब अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। जैसे ही अर्पिता ने समर्थ के मुंह से ये बात सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो समर्थ के चेहरे की तरफ देखने लगी। समर्थ ने उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमने अभी आपको कुछ देर पहले मना किया था ना, और आप फिर से रोने लगी। अर्पिता उसकी बात सुनकर समर्थ का हाथ पकड़ते हुए बोली, हम रो नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा से हमारे साथ थे, लेकिन हम ही आपको पहचान नहीं पाए और इतने दिन तक किसी के साथ होते हुए भी अकेले रहे। इतना बोलते बोलते अर्पिता चुप हो गई। समर्थ ने उसके बिल्कुल करीब जाकर उसे बड़े प्यार से चूमते हुए कहा, कभी कभी हम अपनों के फैसले के बीच में इतना ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क ही नहीं पता चलता, और यही आपके साथ भी हुआ, इसलिए आपको अब बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर अर्पिता ने भी समर्थ की बात पर यकीन कर लिया और वो चुपचाप उसके सीने पर अपना सिर रखकर बैठ गई। वो दोनों विंडो के बाहर देख रहे थे। तभी समर्थ ने आसमान में निकले हुए फुल मून की तरफ देखते हुए कहा, आज का चांद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ अर्पिता के कान के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और हम इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, हम इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी यादों में रखना चाहते हैं। अर्पिता समर्थ की ये बात सुनकर उसकी तरफ बड़ी ही कन्फ्यूजन से देखने लगी और तभी समर्थ ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, मिस अर्पिता राजवंशी, क्या हम आपके साथ एक यादगार पिक्चर क्लिक कर सकते हैं? अर्पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी समर्थ ने कहा, अगर आपकी इजाज़त होगी तभी हम पिक्चर क्लिक करेंगे, वरना नहीं। समर्थ ने जैसे ही ये बात कही, अर्पिता ने अपनी पलकें झुकाते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, उठिए। इतना बोलकर उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और वे दोनों उठकर खड़े हो गए। समर्थ ने अपने कैमरा को ओपन किया और वो अर्पिता के बगल में आकर खड़ा हुआ। उसने अपने कैमरा एंगल को सेट किया और अपने साथ साथ चांद की भी पिक क्लिक की। उसे इतने प्यार से पिक्चर क्लिक करते देखकर अर्पिता मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इप्सिता दोनों चेंजिंग रूम में थे। इप्सिता ने अपने लहंगे को उतार दिया और वो बाथरूम पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी और अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। तभी उसने देखा कि अभिमन्यु जो शावर लेकर अभी अभी वॉशरूम से निकला है, उसने सिर्फ टॉवल बांध रखी थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। इप्सिता ने जैसे ही शीशे में अभिमन्यु को देखा, वो अभिमन्यु के चेस्ट की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु की एब्स और उसके बदन पर बालों से टपकने वाली पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। अभिमन्यु काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और इप्सिता अभिमन्यु की तरफ बस देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नजरें अभिमन्यु की तरफ से कैसे हटाए। अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसके नजदीक चलकर आया और उसने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता अपना पूरा मेकअप रिमूव कर चुकी थी और बिना मेकअप के भी इप्सिता के चेहरे पर काफी ज्यादा ग्लो नजर आ रहा था। इप्सिता की खूबसूरती से अभिमन्यु भी अपनी नजरें नहीं हटा पाया और वो इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर बोला, क्या बात है मिसेज राजवंशी, आपके चेहरे का तो ग्लो बता रहा है कि आप आज कितनी ज्यादा खुश हैं, और अब तो आपके चेहरे पर थकान भी नजर नहीं आ रही है। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता मुस्कुराने लगी और तभी उसने पास में रखी टॉवल उठाई और अभिमन्यु के बालों को पोंछने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, खुश तो आप भी बड़े लग रहे हैं। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ हम तो बहुत खुश हैं और आप ही इस खुशी की वजह हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में पड़ी हुई टॉवल को उसके हाथ से लेकर साइड में रखा। वो इप्सिता के चेहरे के करीब आकर उसके होठों को चूमने लगा। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराया और इस बार इप्सिता भी अभिमन्यु को किस करने में उसका साथ देने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, इप्सिता हमसे और वेट नहीं हो रहा था। उसकी बात सुनकर इप्सिता शर्म से लाल हो गई और अभिमन्यु ने इप्सिता के होठों के करीब जाकर अपने होठ रख दिए। उसने इप्सिता को अपनी गोद में उठा लिया। इप्सिता ने भी जैसे ही अभिमन्यु को ऐसा करते देखा, उसने अपने दोनों हाथ अभिमन्यु की गर्दन में डाल दिए। अभिमन्यु से लेकर सीधे चेंजिंग रूम से बाहर निकल आया। वो इप्सिता को किस करता जा रहा था और धीरे धीरे उसे लेकर बेड के पास आकर बैठा। उन दोनों की किस अभी तक ब्रेक नहीं हुई थी, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को खुद से दूर नहीं किया।
अभिमन्यु ने इप्सिता को बड़े प्यार से बेड पर लिटाया और वो खुद उसके ऊपर जाकर उसे अभी भी किस करता ही जा रहा था। इप्सिता जिसके हाथ अभिमन्यु की गर्दन पर थे, अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसे अभिमन्यु की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के बाथरूम को एक हाथ से खोला और वो इप्सिता को अभी भी किस करता ही जा रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता का बाथरूम हटाया, उसकी नज़र सीधे इप्सिता की क्लीवेज पर गई और अभिमन्यु की दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि बाथरूम हटते ही इप्सिता का फिगर उसकी आंखों के सामने आ गया। अभिमन्यु, जो इस समय सिर्फ टॉवल में था, वो अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे अपने हाथ से इप्सिता की पहली बटन को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपनी बॉडी पर फील किया, इप्सिता गहरी गहरी सांस लेने लगी। अभिमन्यु अभी भी उसे किस करता ही जा रहा था और इप्सिता के हाथ अपने आप ही अभिमन्यु की पीठ पर चले गए। इप्सिता ने हल्के से अभिमन्यु की पीठ को रब किया। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को अपनी पीठ पर फील किया, वो मुस्कुराने लगा और वो इप्सिता की तरफ ही देख रहा था। तभी उसने धीरे से अपने हाथों से इप्सिता की गर्दन को टच करते हुए उसके क्लीवेज पर अपना हाथ रखा और इप्सिता की दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि अभिमन्यु एक पल के लिए वहीं इप्सिता की दिल की धड़कनों को महसूस करने के लिए रुक गया। उसने अपने होठों को धीरे से इप्सिता के माथे पर से हटाया और इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसकी सांस गहरी हो गई। टू बी कंटिन्यूड।